तो समस्या है कि तू जो अपराध करेगा वो तेरे को भोगना पड़ेगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। तो कौन आदमी ऐसा मूड होगा कि अपराध करेगा? शास्त्रों पर जब विश्वास हो जाएगा तो पाप की तो बात ही क्या है, संसार की जो भोग है उससे भी वो हट जाएगा, न्याय से भोगों को भी नहीं भोगेगा। क्योंकि समझता है कि हम एक अपनी धर्मपत्नी के साथ के मां सहवास करते हैं और उससे हमारे को जो सुख मिलता है वो क्षणिक है, और परमात्मा के विषय का जो सुख है वो नित्य है। तो हम इस नित्या सुख को भोग कर रहे, सत्य जो वस्तु है उसका हाथ कैसे करें, उसके बात सुनने में आ जाती है। तो इन सब बातों को हाल में जाकर देखिए, हमको अपना समय उसी काम में बिताना चाहिए जो वास्तव के मां जो बात सत्य है। तो महात्माओं ने विश्वास दिलाया है, ईश्वर ने विश्वास दिलाया है, बहस और लालगढ़ के ऊपर जितना विश्वास करते हैं उतना विश्वास यदि महापुरुषों के वचनों पर करें तो हमारे कल्याण में कोई शंका नहीं है। बहस और लालगढ़ की सामर्थ्य नहीं है किसी बीमार को आराम कर दे। जो एक बीमार आदमी की बीमारी मिलती है उसके पराग से मिलती है, अरे वो खुद कहता है कि हम इलाज करते हैं किंतु प्राण दान देना मेरे हाथ की बात नहीं है। यदि दर्द और डालकर के हाथ की बात है तो अपने घर में वो किसी आदमी को भी नहीं मरने देगा और खुद तो मरेगा ही। जब देखते हैं उसके घर में लोग मरते हैं और वो खुद भी मरता है तो उसके हाथ की बात कहां है? फिर भी हम उस पर विश्वास करते थे कि जो खाने के जो पदार्थ है उसको भी खाते हैं और खाने के जो नहीं है उसको भी ऐसे खाते हैं, कितनी मूर्खता की बात है। जो वैद्य के हाथ नहीं, डॉक्टर के हाथ नहीं, तो फिर हम अपने धर्म का त्याग क्यों करें? शास्त्र विरुद्ध पुष्प का सेवन क्यों करें? किंतु दुख की बात है उस पर हम इतना विश्वास करते हैं कि वो हमारे धर्म के एकदम विरुद्ध औषध देता है तो उसका भी हम सेवन करने लग जाते हैं। जो सर्वथा हमारे धर्म से विरुद्ध है, किंतु समझना चाहिए कि हम सिद्धांत के ऊपर डटे हुए नहीं है। कारण है कि उस पर विश्वास नहीं है अपने सिद्धांत के ऊपर, और विश्वास के प्रधान सुख सत्य है। विश्वास को विश्वास करना चाहिए,
Narayana 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 Nar
चंद्र की जय, मोर मुक्त वंशी वाले की जय। संसार के जिसके भोगों के बीच में जो हमको सुख प्रतीत होता है, वास्तव के बीच में ये भी एक हमारा विश्वास ही है। वास्तु के बीच में संसार के पदार्थों के बीच में सुख नहीं है। हमको संसार के भोगों के मन जो सुख प्रतीति हो रही है, ये केवल मात्र हमारी कल्पना है। थोड़ी बार के वास्ते आप विचार करके देखो, ये शरीर मैं हूं, ये शरीर मेरा है, ये एक हमारा भाव जो है, ये एक प्रकार से हमारी श्रद्धा हो गई है। वास्तव के बीच में शरीर मैं हूं ये बात सही नहीं है, शरीर मेरा है ये बात भी सही नहीं है। किंतु शरीर को मैं मेरा मान लेता हूं, फिर इसके सुख से मैं सुखी होता हूं, इसके दुख से सुखी होता हूं। मैं अपने मन के बीच में ये मान लेता हूं कि ये मेरा मित्र है, फिर उसके सुख से मैं सुखी होता हूं, उसके दुख से मैं दुखी होता हूं। मैं ये मान लेता हूं कि ये मेरा शत्रु है, तो उसके दुख से मैं सुखी होता हूं, और उसके सुख से मैं दुखी होता हूं। केवल मैं इसको मान लेता हूं। वास्तु के मां सोचा जावे तो मैं वो शत्रु मेरा शत्रु है, मैं मित्र मेरा मित्र है। मैं ये मान लेता हूं कि ये असली है और मेरी है, तो फिर उसके सुख से मैं सुखी होता हूं, दुख से मैं दुखी होता हूं। ये मैं मान लेता हूं कि ये मकान मेरा है, तो उस मकान के समझो कि उन्नति से मैं सुखी होता हूं, और उसके नष्ट होने से मैं दुखी होता हूं। तो ये सब मानता है, वास्तव के मन ये झूठा विश्वास है। क्योंकि ये जितने जो बाहर के पदार्थ हैं, ये मेरे नहीं है, इनको मैं मेरा मान लेता हूं, इसलिए इनके सुख से सुखी और दुख से सुखी होता हूं। अस्थियां जो है ये मान लेती है कि ये कपड़ा बढ़िया है, ये बैंगनी है, किसी को बैंगनी बढ़िया लगता है, तो किसी को काला, किसी को पीला, किसी को हरा बढ़िया लगता है। किंतु वास्तव से मां वो उसकी मानता है, क्योंकि वो चीज सबको अच्छी मालूम देती, एक को वो चीज अच्छी मालूम देती है, एक को वो चीज बुरी मालूम देती है, तो उसकी मानता भिन्न भिन्न है। इसी प्रकार से संसार के मां जो कुछ है उसको मानता ही है। एक जो असली है, युवा है, सुंदर है, कामी पुरुष उसको युवा सुंदर समझ करके उसे के साथ में भोगना चाहता है, उसको भोग में आनंद आता है। लड़का जो है छोटा बच्चा, उसको मां समझता है, उसका स्तनपान करता है, उसको उसमें ही आनंद आता है, उसकी वही भावना है। लेकिन जो बाघ है उसको देख करके जीभ लपलपाता है, और वो समझता है कि ये तेरा भोजन है, उसको मार करके जो खाता है तो उसको उसमें सुख मालूम देता है। एक वृद्ध जो पुरुष है वो समझता है कि ये घृणा करने से दुख है, उससे वो वृद्ध होकर के एक प्रकार से उसमें बैराग करता है, कि उसको उसमें बैराग में सुख मालूम देता है। एक महात्मा पुरुष है, उसकी दृष्टि में सभी परमात्मा है, वो उसको परमात्मा की बुद्धि से देखता है, उसमें परमात्मा बुद्धि से उसको आनंद आता है। एक व्यक्ति उस पर नाना प्रकार की भावना, भिन्न भिन्न भावना है, और उसको अपनी अपनी भावना के अनुसार सुख प्रतीत होता है। वास्तु के भीतर में ये अपनी भावना हो, अपना विश्वास को, अपनी धारणा को, उस पर उसमें निर्भर करता है। वास्तु के बीच के मां जो उसमें सुख हो गए, तो सबको ही होना चाहिए, भावना के अनुसार क्यों होना चाहिए। इसी प्रकार से थी अपने सब विषय में समझना चाहिए। कोई मनुष्य को किस प्रकार के बालों के प्रशंस है, अपने सुख मिलता है, किसको किस प्रकार से मिलता है और किसको बालों से नरकने से सुख प्रतीत होता है। यदि बालों के नरकने में सबको सुख होता है तो दुनिया में कोई भी अपने शरीर के ऊपर समझो कि बाल नहीं रखता, केस नहीं रखता। और यदि अधिक रखने में सुख होता है तो सभी अधिक रखते। तो इससे ये मालूम होता है कि अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी मानता, अपनी अपनी धारणा। आप देखिए कि ये कुछ पदार्थों के बीच में जो आपको सुख मिलता है वो आपके भावना से मिलता है, वास्तव में सुख नहीं। तो ऐसी बात है तो असली जो सुख है उसके लिए हमको क्यों नहीं प्रयत्न करना चाहिए। ये तो मिथ्या है क्योंकि ये कायम नहीं रहता। वो बात है तो सत्य और मिथ्य है। परमात्मा का ध्यान करने से भी प्रत्यक्ष में सानुति और आनंद मिलता है। और वो परमात्मा का सुख समझो कि हम अपने समझ के अनुसार इस स्वरूप की मन में धारणा करते थे और ध्यान करते हैं और उसमें हमको आनंद मिलता है। किंतु उस लक्ष्य हम असली आनंद को जब प्राप्त हो जाएंगे तो उसको आनंद की कोई सीमा ही नहीं रहेगी। जबकि एक नकली परमात्मा के ध्यान से हमारे को बड़ा भारी आनंद मिलता है तो फिर असली परमात्मा की प्राप्ति होगी तब तो उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि एक प्रकार से संसार के मां या समझो कि परमात्मा के बीच के मां जो साधन काल के बीच में हमको सुख प्रतीत होता है वो सभी एक प्रकार से समझो कि आपने अपने भावना पर निर्भर करता है। जो संसार के दूसरे भोगों के बीच के मां प्रतीत होने वाला जो राज से सुख है वो भी भावना से प्रतीत होता है। जो समझो कि परमार्थ विषय का जो सुख है परमात्मा के ध्यान विषय का वो भी भावना पर निर्भर करता है। जो भावना पर निर्भर करता है तो परिणाम के बीच के मां जो सत्य वस्तु है उसी की भावना करनी चाहिए और परिणाम के मां जो मिथ्या वस्तु है उसमें उसकी भावना करके उसमें अपना समय क्यों लगाना चाहिए। तो आप खूब ध्यान देकर के देखो कि परमात्मा का ध्यान करने से आगे जाकर के वो असली वस्तुओं को मिलती है। शाखा समय निर्णय चीजों द्वितीय का चंद्रमा जो बताया जाता है, लक्ष्य कराया जाता है, वो साधन एक प्रकार से चलता हुआ है किंतु उसका जो फल है असली चंद्रमा का दर्शन हो जाता है। इसी प्रकार से साधन काल के द्वितीय मां जो परमात्मा का ध्यान किया जाता है उसका नतीजा फल जो आंखें के मां जाकर के सत्य होता है। किंतु संसार के पीछे भोगों के पीछे मां जो हमारी भावना है वो स्वप्न होता है। सपने में जैसे क्षणिक काल के लिए हमारी भावना हो जाती है और उसके बाद वो पदार्थ नहीं है, उसी प्रकार से संसार के पदार्थों के पीछे मां जो हमारी भावना यानी विश्वास हो जाता है वो आगे जाकर के नहीं है। आगे जाकर उस पदार्थ आगे जाकर के उस पदार्थ से की हमारा संबंध भी ऐसा नहीं है, वो पदार्थ ही ऐसा नहीं है और हम भी एक जो बड़े बच्चे वैसा नहीं है। ये हमारी मान्यता है, हम जो एक प्रकार से अपने को मानते हैं मनुष्य है ये हमारी मान्यता है, हमारी कल्पना है। हम अपने को मानते हैं समझो कि दृष्टि है हम वही से हैं ये हमारी कल्पना है। हम मानते हैं कि हमारा नाम जय जी आर है ये हमारी कल्पना है। तो नाम के मां समझो कि जो भावना है वो भी कल्पना है और सब चीजों के मां जो भावना है वो कल्पना है, वो अभिमान मात्र है। जाति का अभिमान, नाम का अभिमान, स्वरूप का अभिमान, देश का अभिमान, ये जितने प्रकार के अभिमान है ये सब मान्यता है। वास्तव के मां कोई वस्तु नहीं है, यदि हुए तो कायम रहे, ये कायम नहीं रहती। पर ये मानता पहले नहीं थी, बाद में हुई। हमारा नाम भेजिया जो है हम जब पैदा हुए तब नहीं था, बाद में हमारा नाम हुआ। अब जैसा की कोई निंदा करता है वो गुण मालूम देती है, स्तुति करता है शिव मालूम देती है, तो कारण क्या है कि हमने ये बात निश्चय मान ली कि मैं जैसा। इसी प्रकार से ये सारी मानता है कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो वैश्य हूँ, मैं एक प्रकार से गृहस्थी हूँ, मैं मनुष्य हूँ, ये सारी मानता है। निश्चय बाद में हुआ है, ये कोई भी निश्चय जब पैदा हुआ था तब ये नहीं था, ये इसकी मानी हुई बात है। इसी प्रकार से जो मानी हुई बात है और ये ठहरने की नहीं है, तो हमको ऐसी मान्यता करनी चाहिए जो वास्तव के वहां ठहरने वाली हो, वो सच्ची हो, जिसका नतीजा सच्चा हो। इनका तो सबका नतीजा झूठा है, सबका नतीजा एकदम मिथ्या है। ये बात कायम रहने की नहीं है। तू जब शरीर ही कायम नहीं रहेगा तो उसके साथ के माँ मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं एक प्रकार से मनुष्य हूँ, ये कोई भी बात कायम नहीं रहेगी, क्योंकि सब बातें मिथ्या है। तो इस प्रकार से हमको विचार करके समझ करके जो वास्तु के माँ जो बात है कायम है उसी के ऊपर विश्वास करना चाहिए और उसी की मान्यता करनी चाहिए। तो परमात्मा है, इसमें कोई शंका की बात नहीं। सबके नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता है। आत्मा है तो इस पर हमको विश्वास करना चाहिए। जो के भीतर में जो चेतन जो ज्ञाता पुरुष है वो आत्मा है, वो नित्य है, वो सत्य है, उस पर विश्वास करना चाहिए। उसका कभी अभाव नहीं होगा। जो चीज हमारे से प्रकट है वो घटते बढ़ती है, किंतु हम कभी घटते बढ़ते नहीं। जो हमारे से प्रकट चीज है वो हमारे पर निर्भर करती है, किंतु उनके ऊपर हम हमारी निर्भरता नहीं। यानी वे हमारे आधार है, हम उसके आधार नहीं। उनके नाश होने से मेरा नाश नहीं होगा, किंतु एक प्रकार से मेरे नाश होने से भी उन सब का मेरे लिए नाश हो जाएगा। तो वास्तव के बीच में मेरा नाश क्या, इस शरीर का नाश, आत्मा का तो कभी नाश होता ही नहीं। तो ये समझना चाहिए कि आत्मा कभी नाश नहीं होता, समझना चाहिए कि परमात्मा कभी नाश नहीं होता। परमात्मा जो है वो नित्य है, वो सत्य है और वास्तव के बीच के माँ है, उसके माँ समझो कि फिर मदद नहीं है, वो एक रस है। ऐसा समझ करके उसे परमात्मा के स्वरूप का हमको ध्यान करना चाहिए। आप सर्क के देखिए, कोई भी चीज जो एक प्रकार से बनाई जाती है पहला उसका नक्शा खींचा जाता है, फिर उसके अनुसार समझो कि वो चीज बनाई जाती है। कोई एक हम मकान बनाते हैं तो उसका बड़ा नक्शा बनाते हैं और उसके अनुसार फिर उस मकान को उसको बनाते हैं। इसी प्रकार से ये एक प्रकार से परमात्मा का जो ध्यान करना है, ये नक्शा खींचना है, फिर उसी के अनुसार वो चीज आगे जाकर के प्राप्त होती है। ये ख्याल करके हमको परमात्मा का ध्यान ही करना चाहिए और ध्यान के भी केवल हमारे को कितना भारी आनंद आता है जिसकी कोई सीमा नहीं। कोई मनुष्य एक स्त्री का ध्यान करता है, समझो कि युवा और सुंदर स्त्री का ध्यान करता है और वो स्त्री कहीं है, किंतु ध्यान करने से भी एक प्रकार से उसको कुछ उसमें आनंद प्रतीत होता है, एक प्रकार से सुख प्रतीत होता है, किंतु वो सुख घृणित है और त्याग है और वो एक भावना से होता है। वास्तव में तो उसका साथ में कोई संबंध तो है ही नहीं, एक प्रकार से प्रत्यक्ष में कोई संबंध नहीं है, केवल हमारे मन की भावना है। तो मन की भावना से भी जो घृणित सुख को हम अनुभव करें तो हमारी मूर्खता है। इस वास्ते हमको असली जो सुख है उसका अनुभव करना चाहिए। परमात्मा निश्चय सत्य है और परमात्मा वास्तव में मिल सकते हैं। उस स्त्री के मिलने में संदेह है, मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, किंतु परमात्मा अवश्य मिल सकते हैं। हम परमात्मा को चाहते हैं, परमात्मा हमको चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि परमात्मा का संकल्प सत्य है, हमारा संकल्प कोई सत्य नहीं। और परमात्मा जिस प्रकार से हमको चाहते हैं उसे उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। हम जो परमात्मा को चाहते हैं अपनी शक्ति के अनुसार, वे चाहते हैं अपनी शक्ति के अनुसार। तो उनकी जो भावना है, उनका जो संकल्प है वो सत्य हो जाता है। तो हमारे हृदय में परमात्मा से मिलने की इच्छा होती है, तभी परमात्मा के हृदय में हमारे से मिलने की इच्छा होती है। इस बात को ख्याल में करते हुए कि हमको परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, परमात्मा से मिलने की इच्छा करनी चाहिए, परमात्मा केवल इच्छा से मिलते हैं, उसके लिए और कोई अलग साधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परमात्मा के मिलने की तीव्र हमारे हृदय में इच्छा होनी चाहिए, बस फिर परमात्मा के मिलने में कोई शंका की बात नहीं है, क्योंकि हमारे मन में परमात्मा से मिलने की तीव्र इच्छा होगी तो परमात्मा के हृदय के मन हमारे से मिलने की तीव्र इच्छा होगी। हमारा जो संकल्प सत्य नहीं होगा, किंतु परमात्मा का संकल्प तो सत्य अवश्य ही होगा। इस बात को मन के मन निश्चय कर सकते और परमात्मा के मिलने की तीव्र इच्छा हमको करनी चाहिए, परमात्मा से हमको प्रेम करना चाहिए। संसार के पीछे बहुत हम जो प्रेम करते हैं ये हमारे लिए खतरे की चीज है, मूर्खता है। मूर्खता को हटा करके और परमात्मा के माने तो प्रेम करना चाहिए, उसी का ध्यान करना चाहिए, उसी में विश्वास करना चाहिए और उसी के मिलने की हमको तीव्र इच्छा करनी चाहिए, फिर परमात्मा के मिलने में कोई शंका की बात नहीं है। नारायण नारायण नारायण।